हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्रेशे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अति करुणा दयामयी, ब्रजेश्वरी राशेश्वरी राधा रानी, ऊर्जेश्वरी, इस महीने का नाम ऊर्जा, कार्तिक को ऊर्जा महीना कहते हैं, इसकी आराध्य ऊर्जेश्वरी राधा सह दामोदर, दामोदर के साथ। तो ऐसा सेल का महीना, सेल का महीने का मतलब है कि जो चीज 5000 की है वो 50 में मिले, तो ये महीना दामोदर मास वैष्णो हम कहते हैं। ऊर्जा व्रत इस महीने में ऊर्जा व्रत कहते हैं कार्तिक व्रत को, और ऊर्जेश्वरी श्रीमती राशेश्वरी राधिका सह दामोदर, उनकी क्या हम लोग कब, आप सब भाग्यशाली है जो यहां इस महीने में सौभाग्य प्राप्त हुआ है ब्रजधाम में रहने का, वृंदावन में रहने का, चाहे एक दिन के लिए चाहे एक महीने के लिए, जितना क्षण भी मिला है बड़ा सौभाग्य से मिला है। शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति के 64 अंग जो हैं उनमें एक ये कार्तिक का महीना वृंदावन में करना भी लाभदायक है, उन अंगों में आता है। सो हमारा जो साधन है वो तो है भक्ति का। और कल जब रात को बात हुई क्लास आज देने की, तो हमसे पूछा कौन से विषय पे कथा करेंगे, तो से अनायास मुख से निकला भक्ति रस। तो मैं बोलो तो बोला तो सही, फिर सोचा भक्ति रस के ऊपर क्या बोलना है। तो वैसे मंगलाचरण में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मुख्य मंगलाचरण में श्लोक लिखते हैं, उसमें दोनों शब्द ये आते हैं, या बाद में देखा मैंने तो उस श्लोक के शब्द पढ़ते हैं, भक्ति ही पूर्व ही श्रीता तंतु, भक्ति ही पूर्व, पूर्व का मतलब पहले समय में, भक्ति श्रुता तंतु, ये भक्ति का जो धारा है ये तो पहले जमाने से चलता आ रहा है। तो इस पूर्व के तात्पर्य में हमारे आचार्य गण लिखते हैं, नारद भी भक्ति करते हैं, चार कुमारों को भी भगवान विष्णु के चरणों की तुलसी का गंध सुन के भक्ति में आसक्ति हो गई, प्रहलाद भी भक्त है, ध्रुव भी भक्त है, तो इन सब भक्तों का लिख तो है। तो ये सब पहले भक्ति तो सबने पहले भी की, बाकी सब मार्ग को छोड़कर इन पूर्व पूर्व जो जो पूर्व आचार्य हैं इन्होंने भी भक्ति किया, लेकिन चक्रवर्ती काज कहते हैं रसम, लेकिन रस रूपा भक्ति का पता उनको भी नहीं था। ये जो रसमयी भक्ति है इनकी जानकारी उनको भी नहीं थी। रसम पश्येद यद आत धीही तम नवमी सततम रूपा नाम प्रिय जनम हरि ही, प्रिय जनम हरि ही, हरि का बहुत प्रिय जन, हरि का प्रिय जन मतलब जो भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण पृष्ठाय, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है हरि का प्रिय है। और कौन है हरि का प्रिय? रूप, श्री रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने आतधी ही बुद्धि के द्वारा रसमयी भक्ति जो भक्त करते हैं उसका संसार को परिचय कराया। इससे पहले भक्ति के इस भाव से पूर्व भक्त भी परिचित नहीं थे। अब दो शब्दों का पहले व्याख्या समझ ले, फिर आगे कथा को बढ़ाते हैं। भक्ति क्या है? भजन, भजन भज धातु से भक्ति होती है और वो केवल भगवान के लिए होती है। और भक्ति के श्री रूप गोस्वामी ने पहले भी भक्ति के डेफिनेशन सांडल्य भक्ति सूत्र में भी छोटा सा भक्ति के लिए एक शब्द है अनुरक्ति, जो भगवान में अनुरक्त करे उसको भक्ति कहते हैं। फिर पंचरात्रा में है विनुर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम ऋषिकेश ऋषि सेवनम, ये भक्ति का दूसरा भी एक शास्त्र में वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी भक्ति के ऊपर थोड़ा सा उल्लेख है कि भक्ति भगवान का सेवा करने के लिए है, लेकिन भक्ति का जो अर्थ परिपूर्ण रूप से श्रीपद रूप गोस्वामी पाद ने दिया है वो परिपूर्ण है। उससे पहले ऐसा परिपूर्ण नहीं था। और वो कौन सी भक्ति का अर्थ दिया? उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति। इसका मतलब दूसरी एक भक्ति भी है, उसको कहते हैं मिश्रित भक्ति। तो भक्ति किससे मिश्रित होती है? कर्म से, ज्ञान से या योग से। ये तीन और साधन है, अगर वो भक्ति से मिल जाए तो उसको उत्तम भक्ति नहीं कहते, शुद्ध भक्ति नहीं कहते। तो उत्तम भक्ति का क्या अर्थ बताया श्री रूप गोस्वामी पाद ने? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। और फिर क्या कहा? अनुशीलेन कृष्ण अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन। तो इसमें दो विभाग है श्लोक में। एक को कहते हैं भक्ति का स्वरूप लक्षण और एक को कहते हैं भक्ति का तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब जो भक्ति के अंदर समाया हुआ है, और तटस्थ लक्षण लक्षण भक्ति को उत्तम बनाने में काम करता है। भक्ति उत्तम कब होती है? जब तटस्थ लक्षण उसमें जुड़ते हैं। लेकिन भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। और अनुशीलनम जो शब्द है ये भक्ति का सार है, स्वरूप ये है भक्ति का अनुशीलनम। अनुशीलनम का अर्थ वाणी से, मन से, शरीर से श्री कृष्ण की अनुकूल सेवा की चेष्टा करना, मन कर्म वाणी से, तीनों से। अनुशीलनम शब्द का अर्थ लिखा है अंग्रेजी में कल्टीवेशन। कल्टीवेशन जैसे खेत में कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें काम करना पड़ता है, तो सक्रियता है, भक्ति सक्रिय है। अनुशीलन करना है और अनुकूलन करना है, कृष्ण का अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। और कृष्ण के अर्थ का भी बहुत अद्भुत अर्थ रूप गोस्वामी पाद ने किया। इससे पहले कृष्ण, श्री कृष्ण अपने सब अवतारों और अपने सब भक्तों के सहित, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। श्री कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण कृष्ण के सारे ही अवतार जो कि उनके विस्तार हैं और उनके भक्तगण, वो भी कृष्ण शब्द में आते हैं। और तटस्थ लक्ष्मण लक्षण लक्षण में क्या है? एक अन्याभिलाषिता, और एक ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति उत्तम कब होगी? जब उसमें ज्ञान और कर्म का लेश मात्र भी अंश नहीं होगा। और अनाभिलाषिता का क्या अर्थ है? कोई और अभिलाषा नहीं कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त। और फिर भक्ति को एकदम रूप गोस्वामी कहते हैं कि तीन प्रकार की उत्तम भक्ति होती है, साधन, भाव और प्रेम। तो उत्तम भक्ति के तीन विभाग की, असल में दो विभाग है, साधन भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति साधन है और प्रेम भक्ति उसका साध्य है, उसका फल है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि बीच में भाव का जो स्तर आता है वो साधन में भी नहीं है और पका हुआ प्रेम भी नहीं है, इसलिए बीच में तीसरा विभाग रखते हैं। तो कहते हैं साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है? हम सब क्या कर रहे हैं? साधन भक्ति कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? साध्या भवेत, साधना करने से क्या होना चाहिए? भाव प्रकट्य, भाव प्रकट होना चाहिए। इसका मतलब है कि भाव सबके अंदर पहले से पड़ा है, भाव कहीं बाहर से लाना नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना 6 महीने का, उसमें चलने की क्षमता अंदर पहले होती है, उंगली से पकड़ के चलाते हैं तो चलना शुरू करता है। तो इसका मतलब चलने की उसके अंदर पहले से सामर्थ था, हमने थोड़ा सहारा दिया और चलना शुरू कर दिया। लेकिन उसको कहो उड़े तो नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उड़ने का उसके अंदर है ही नहीं। तो ऐसे भाव सबके अंदर पड़ा है, सबके अंदर पड़ा है। साधन करने से उस भाव को प्रकट करना है। तो भाव जो है वो साधन नहीं है, वो तो पहले से अंदर पड़ा है, उसको केवल प्रकट करना है, साधन से उसको प्रकट करना है। और जब भाव प्रकट हो जाता है तो भाव के लिए दूसरा शब्द है रति। भाव को रति भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं और प्रेम का अंकुर भी कहते हैं। प्रेम का अंकुर मतलब प्रेम का बस अंकुरित हुआ है, अब बस प्रेम प्रकट होने वाला है। जैसे प्रभात होती है सुबह, सूर्य उगने से पहले लालाई आ गई तो इसका मतलब सूर्य उदय होगा। तो भाव वो प्रभात है जिसके बाद सूर्य, प्रेम रूपी सूर्य का उदय होता है। अब ये भक्ति की, अब ये भक्ति की परिभाषा बोला, इसको भक्ति कहते हैं उत्तम भक्ति। इसके ऊपर रस क्या है? भक्ति रस हमने विषय रखा है, रस क्या है? कोई ऐसा कार्य जिसके करने में हमको सुख मिले, आनंद मिले और उस सुख और आनंद के कारण उस कार्य को करते ही रहे और करते ही रहे और करते ही रहे, उसको रस कहते हैं। पर कहीं रस आता है तब काम करते हैं ना, नहीं तो काम क्यों करेंगे? कोई भी कार्य जीवन में करने से कुछ सुख मिले, कुछ आनंद की अनुभूति हो और उसको दोबारा करते रहने की इच्छा बनी रहे और करता रहे, उसको रस कहते हैं। और फिर श्री प्रभुपाद जी रस को दो प्रकार के रस बोलते हैं, एक भौतिक रस और एक आध्यात्मिक रस। भौतिक रस क्या है? सबको काम करना पड़ रहा है, काम करना है, लेकिन काम करते करते 5 दिन काम करते हैं, शनिवार आता है, सब कहते हैं कौन काम करेगा, छुट्टी करते जाते हैं वृंदावन। दिल्ली वाले आते हैं ना यहां, और यहां आएंगे संडे की शाम होगी तो कहते हैं वृंदावन को छोड़ो, अब वापस घर चलना। तो यहां से भागने की विचार करेंगे। तो जो भौतिक रस है उसमें थोड़ा सा भोग और फिर त्याग, भोग त्याग, काम करेंगे अरे थक गए नहीं करना है जाना है, जाते हैं आज वो हिमालय में जा रहे हैं, हिमालय गए तो वापस घर आना दुकान खोलना, तो ये सदा रहने वाला रस नहीं है भौतिक। जबकि दूसरा रस जो है आध्यात्मिक वो नित्य है, और ये जो रस भक्ति का है ये नित्य रस है, भक्ति रस रूपा है। इसका मतलब भक्ति में आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये तो प्रतिदिन बढ़ने वाला रस है। ये रस प्रकट कैसे होता है? चार पांच भाव तो हम सब जानते हैं, स्थाई भाव पांच, भगवान के साथ सब जीवों के जो भाव होते हैं कौन कौन से भाव हैं? शांत, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, इसको क्या कहते हैं? रस। ये भाव हैं जो रस की उत्पत्ति करते हैं, रस, ये रस इसमें प्रकट होता है। तो रस प्रकट करने के लिए एक शब्द श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ आता है, उद्दीपन मतलब जिसको देख के कुछ करने की इच्छा हो, कोई चीज सामने देखें तो उद्दीपन। ऐसे रस शब्द का सही माना में अर्थ निकालें तो रस शब्द का अर्थ है रास, जिसमें भगवान ने रस का विहार किया, रास, तो रस ही रास है। तो रास रस, भगवान रसो वैस, वो रस राज है। और प्रेम तक का तो हमने उत्तम भक्ति में नाम ले लिया, लेकिन प्रेम के बाद भी सात आठ नौ और स्तर ऊपर के हैं जो असल में रस का वर्धन है। प्रेम के बाद आता है स्नेह, प्रेम स्नेह मान, पुनः प्रेम स्नेह मान प्रमान प्रणय, प्रणय मान, प्रेम स्नेह प्रणय मान, और फिर है राग महाभाव, महाभाव मोदन मादन मदाख्यान महाभाव स्वरूपा राधा। तो ये प्रेम के ऊपर के स्तर हैं, स्नेह प्रेम मान प्रणय। राधा है कृष्णेर प्रणय विकार, कृष्ण जब प्रणय के स्तर पे होते हैं तो उनके अंदर से राधा का प्रकट्य होता है। तो ये रास और रस के लिए पुराणों में वर्णन है और श्री चैतन्य चरितमृत में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो भी गोपी गण हैं वो सब राधा रानी का कायाव्यूह है। कायाव्यूह मतलब शरीर का ही विस्तार, और संभवतः ब्रह्म नारदीय पुराण में के विवर्त पुराण में है कि राधा रानी के रोम कोपों से गोपियां निकली और कृष्ण के रोम कोपों से सब गोप निकले। तो ये भगवान के अपने ही विग्रह का विस्तार है, काय के लिए, रस आस्वादन के लिए, रस के लिए। सो भक्ति का रस, भक्ति रस रूपा है, रसमयी है। अब ये प्रश्न पूछा जाए कि हम भक्ति बहुत समय से कर रहे हैं, हमको क्या रस मिल रहा है? हाँ, नहीं मिला होता तो 10 साल 20 साल से कैसे भक्ति करते, नहीं तो नहीं करते। थोड़ा सा रस का चश्का भगवान दे के फिर प्रायः रोज रोज नहीं देते, कभी कभार उसके अंदर ऐसी अनुभूति होती है। सो भक्ति के रस की जो प्रक्रिया है वो आठ स्तरों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, असल में कहा जाए कि भक्ति के रस को ब्रह्मा जी के कल्प का मतलब एक दिन न एक दिन कल्प को कहते हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य होता है तब ये भक्ति के रस का प्रकट होता है, नहीं तो ये भक्ति का रस नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा जी के इस कल्प के हम उस कालयुग के प्रारंभिक चरण में हैं जिसमें 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और इस भक्ति के रस का श्री रूप गोस्वामी के द्वारा विस्तार किया। कितने भाग्यशाली है, नहीं तो करोड़ों सालों के बाद भी ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। और 5000 कुछ साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लीला की, जिनके चिन्ह अभी तक हमको यहाँ मिल रहे हैं, और वो तो 500 साल की बात महाप्रभु के आने की। उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो मुख्य उद्देश्य रस रूपा भक्ति भक्ति के रस को जो देना था, उस भक्ति के रस को देने का सारा कार्य अपने प्रिय श्री रूप गोस्वामी के हाथों से कराया, तो वो हमारे रस आचार्य हैं। और 10 दिन तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 अश्वमेध घाट प्रयागराज में श्री रूप गोस्वामी को भक्ति रस अमृत सिंधु का उपदेश किया। 45 मिनट के भगवत गीता के उपदेश को पूरा विश्व जानता है और मानता है। केवल भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट में यह उपदेश दिया, और विश्व का प्रतिष्ठित शास्त्र है जिसकी तुलना अतुलनीय शास्त्र है। और जो 10 दिन तक श्री कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण का युगल स्वरूप, राधा भाव और कांति रंग प्रेम के इस रस को देने के लिए महाभाव स्वरूपणी राधा के भाव को चैतन्य महाप्रभु 10 दिन जो रूपशील रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, कितना महत्वपूर्ण होगा। रूप रघुनाथ इन दोनों के द्वारा कविराज गोस्वामी चेतन चरितमृत के हर अध्याय के पीछे लिखते रूप रघुनाथ पदे हमारी प्रणाम करते हैं, कब आकुति हमारी आसक्ति हो। तो इनके माध्यम से, क्योंकि प्रेम के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, प्रेम के आचार्य, और रस के आचार्य रूप गोस्वामी हैं, तो ये प्रेम रस हो गया। वैराग विद्या के आचार्य और प्रेम के प्रयोजन के आचार्य, प्रयोजन प्रेम है। और यहां क्या कोई प्रश्न है किसी का? सो दस दिन तक जो उपदेश दिया, उस उपदेश का श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में प्रकाश किया, उसी के ऊपर श्री जीव गोस्वामी ने अपनी टीका लिखी समझाने के लिए विस्तार से, और उसी के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु नाम की टीका लिखी। तो भक्ति के रस का ऐसे धारावाहिक महाप्रभु के द्वारा श्री रूप गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी, और उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के माध्यम से ये धारा प्रवाहित होके भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और अभय चरणारंभ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये भक्ति की धारा यहां आ रही है। रसरूपा जो भक्ति है, इस रस हमारे मन का भाव ये था कि हमने यहां देखा तो रस रास से लगता है, आनंद की अभिव्यक्ति सुख, जो आनंद जो है, जो सुख है वो भक्ति में पहले स्तर में भी आ जाता है, सुखदा साधन भक्ति में ही आ जाता है, क्लेश घनी सुखदा ये तो साधन के स्तर पे आता है। ये साधन करते हुए दो तो हमारे को क्लेश घनी दुख पाप ताप संताप तो चले जाते हैं और सुखदा और सुख आने लगता है। अन्य जो इस भक्ति के चार लक्षण है वो भाव और प्रेम तक आते हैं। तो हमारी भक्ति करने का उद्देश्य है भाव के स्तर पे पहुंचना, और हम बात कर रहे थे वो बीच में रह गई आठ स्तर जो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने दिया है, और सभी तो रास वाले शब्द को हाथ लगाना है हमको, लेकिन फिर भी ये बात करते हैं। आदव श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के स्तर के बाद ही निष्ठा रुचि भाव, भाव के लिए अनर्थ निवृत्ति को तो पार करना ही है। इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरा माधुर्य कादंबिनी इसी के ऊपर लिखा है। आठ जो भक्ति के क्रम से आदव श्रद्धा से लेके प्रेम तक जो स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या रुकावटें हैं और उनको कैसे पार करना है, ये उनकी शिक्षा का पूरा पुस्तक है माधुर्य कादंबिनी। माधुर्य का मतलब रसमयी और कादंबिनी का मतलब बादल कहते हैं। बादल से जैसे वर्षा गिरती है, पहली वर्षा दूसरी वर्षा, ऐसे आठ आठ वर्षाएं हैं मधुर प्रेम की, भक्ति तक पहुंचाने की। तो उसके अंदर तो बहुत बड़ा विस्तार से है, वो तो अपने आप में चार पांच दिन का वो तो पढ़ाने वाला पुस्तक हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे जहां भी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की अतुलनीय अनुपम लीला होती है, तो एकदम सावधान करने के लिए व्यासदेव लिखते हैं और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये लीला भगवान अपि, ये भगवान की लीला है। गोवर्धन लीला शुरू करते हैं तो लिखते हैं भगवान अपि, क्योंकि ये आम व्यक्ति का काम नहीं है। और रास लीला के पहले अध्याय में भी लिखते हैं भगवान अपि, कि ये जो लीला करने जा रहे हैं ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये भगवान है। तो ये पहला श्लोक में उच्चारण कर रहा हूं। बादरायण वाच, बादरायण सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान अपि, पहली शब्द भगवान अपि, भगवान होते हुए भी। भगवान कैसे हैं, बोला आत्मा राम है, आपत काम है, उनको कोई चीज चाहिए नहीं, वो अपने आप में रमण करते हैं, कुछ उनको चाहिए नहीं। फिर भी तारात्रि ही, अब एक रात नहीं है, ये बहुवचन है। ये कितनी बड़ी रात थी, बोला ब्रह्मा जी के एक रात के बराबर रात थी, ये रात छोटी रात नहीं थी, सामान्य रात नहीं थी, नहीं तो रात ही बोल के काम चला सकते थे। तारात्रि ये विशेष रात थी, सामान्य रात नहीं थी। क्या आया हुआ, क्या उसने देखा, तीन दो बातें यहां पहले लिखी हैं, शरद उत्फलो मलिका वीक्षय, शरद उत्फलो मलिका। एक तो शरद ऋतु है, उसके अंदर चंद्रमा निकला और बहुत सुंदर पुष्प जो इस ऋतु के नहीं है, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं तो किसी भी ऋतु के पुष्प निकल सकते हैं, तो ये जो पुष्प खिलने चाहिए इस ऋतु के नहीं है। और लिखा है कि कमल तो सूरज को देख के खिलता है, इस रात्रि को तो चंद्रमा को देख के कमल खिल रहा है। ये भगवान की लीला है तो दुनिया जैसी नहीं है। अब ये दोनों, ये तीनों को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये उद्दीपन है। क्या उद्दीपन है, एक तो शरद पूर्णिमा की रात्रि, दूसरा ये जो पुष्प खिले हैं, ये पुष्प खिले हैं शरद उत्पला मलिका, मलिका के पुष्प जैस्मिन, जैस्मिन मतलब मोगरा, जुई, चमेली, चमेली के मौसम नहीं है तो चमेली के फूल खिले, और कौमुदुदा और भगवान कमल खिले हैं। अब रात को कमल कैसे खिले हैं आगे लिखा है, तो ये सब। और दूसरा स्थान वृंदावन है, जमुना जी का तट है, ये सब उद्दीपन है। क्या उद्दीपन कर रहे हैं, रस का, उसके लिए ये सब तीन उद्दीपन लिखे। तो क्या हुआ उस दिन, वीक्षय देख कर इनको रंतुम मनस चक्रे, रंतुम मनस चक्रे, मन में रमण करने का, रंतु रमण करने का, भगवान रमण करना चाहते हैं। मनस चक्रे, मन में रमण करने का विचार उत्पन्न हुआ, किसके साथ या कैसे, बोल योग माया उपाश्रित, किसके माध्यम से किया, बोला योग माया उपाश्रित, योग माया उपाश्रित। एक तो साधारण अर्थ है, अपनी योग माया का आश्रय लेकर। माया का एक अर्थ होता है कृपा, करुणा, जैसे मां को बोलते हैं ये तो बड़ी ममता मई माया है, ये माया रूप है। माया कैसी है, माता कैसी है, बोला माया मई है, कृपा। और योग का अर्थ क्या है, सदा जुड़ा हुआ। तो कृपा रूप राधा जो सदा कृष्ण से जुड़ी हुई है, उसका आश्रय लेके, उसकी कृपा के बगैर रास नहीं हो सकती। ये जो रास, पुराने प्राचीन ब्रजवासी जब रास लीला का आरंभ करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उठ के प्रार्थना करते हैं राधा रानी को, क्या प्रिया जो रास का समय हो रहा है, आपकी अनुमति हो तो रास आरंभ किया जाए। तो इसका मतलब राधा रानी की अनुमति, उनका आश्रय उपाश्रय। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में कहां से हो, तो राधा और कृष्ण का मन अलग नहीं है, एक ही मन है, वो तो एक ही आत्मा है, दो रूप धरी। तो उस प्रकार ये भाव जो आया है, इसको लिखने से पहले साधारण अर्थ तो ये है कि एक शरद ऋतु की रात को भगवान श्री कृष्ण के मन में रमण करने का चांद की चांदनी और खिले हुए फूलों को देखकर मन में विचार उत्पन्न हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती पहले तो अपने परंपरा में अपने गुरुदेव दीक्षा वाले से लेकर और अपने परम गुरु नरोत्तम दास ठाकुर तक सबको पहले प्रणाम करते हैं। नाम लिख के अपने गुरुदेव रामकृष्ण कह के और फिर उनके गुरुदेव और फिर गंगा नारायण चक्रवर्ती, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर लोकनाथ और फिर चेतना महाप्रभु, ऐसे परंपरा को प्रणाम करके कहते हैं ये विषय ऐसा है कि इन सब की कृपा के बगैर इसको विस्तार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जब भी कोई गंभीर विषय हो तो परंपरागत प्रणाम करके उनके प्रतिनिधि होके उनके भावों को ही प्रकट करना चाहिए। और फिर चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ये रास पंचोध्याय जो है, ये पांच प्राण है असल में। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं आप कृष्ण की आयु देने के लिए कि जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे तो उमावस्या के दिन, कार्तिक की उमावस्या जो अभी गई, दिवाली होती है वो हो गई दिवाली, ठीक है, और उसके बाद दूसरे दिन, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने दनंद बाबा आदि को कर्म मीमांसा का उपदेश दिया। बोला काय के लिए इंद्र की पूजा करते हो, हम कर्म करते हैं फल अपने आप मिलेगा, इसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने गिरिराज की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, गाय की पूजा करेंगे। तो ये उस दिन की कथा। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन और प्रतिपदा को, पहले दिन प्रतिपदा को ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, वो गोवर्धन पूजा का दिन आ गया। और उस दिन के बाद दूसरे दिन द्वितीय को ये भाई द्विज, दूसरे दिन क्या आता है, गोवर्धन के दूसरे दिन क्या आता है, भाई दूज। अब इसमें भाई कौन है, यमराज, और बहन कौन है, जमुना जी, ये दोनों सूर्य पुत्र, पुत्र और पुत्री है, और संज्ञा जो सूर्य पत्नी संज्ञा है उसके ये दो संतान है। तो सूर्य देव संज्ञा के पास जा रहे थे तो सूर्य का प्रकाश इतना था, सूर्य देव संज्ञा ने सम्यक ज्ञान, संज्ञा का मतलब सम्यक ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान जिसके पास हो, तो संज्ञा ने आंखें बंद कर दी तो सूर्य देव ने कहा आपको जो संतान होगा सारी दुनिया की आंखें बंद कर देगा, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, डरेंगे। तो संज्ञा ने हाथ जोड़ के चरण पकड़ के कहा कृपा कीजिए। बोला ठीक है, फिर आपको ऐसी कन्या होगी, पुत्री ऐसी होगी जो सबको भयानक भाई से बचाएगी। तो भयानक भाई कौन पैदा हुआ, यमराज, जिससे सब डरते हैं, आंखें ही बंद करते हैं उसको देखकर। लेकिन फिर जमुना जी को जो प्रणाम कर ले वो यमराज उसका नाम ही नहीं लेता, क्योंकि यमुना सबका पाप धो लेती है, सबका पाप धोने वाली है। तो ये जो दूसरा दिन आता है गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन का, विश्राम घाट पे मंदिर है यमी और यमुना, यमी और यम, यम मतलब यमराज और यमी मतलब यमुना देवी। स्नान करके यमुना से जो उसका दर्शन करता है उसको कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। और प्रायः उस दिन गुजरात से तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं इस भाई द्वज को। तो यहाँ द्वितीया को भाई द्वज हो गया, कहते हैं भाई, यहाँ लिखा है भाई द्वज हुआ। तृतीया को इंद्र ने वर्षा शुरू की, तो तृतीया से लेकर 7 दिन तो दसवीं आ जाएगी, हाँ नवमी तक क्या चला, अब इंदिरा ने तृतीया से लेकर नौमी तक 7 दिन तो किया वर्षा, ये तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया। दसवीं, जो दसवीं की तिथि आई उस दिन सारे ही ग्वाल बाल नहीं बड़े बड़े गोप बाबा नंद बाबा के पास आए, बोला आपके घर में ऐसा बेटा है, इतना बड़ा पर्वत उठाया, आपने हमको बताया नहीं कौन है देवता ये। अब तो सारी पंचायत आके बैठ गई, तो नंद बाबा ने कहा भाई भाइयों बैठो, दूध पियो, मक्खन खाओ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब गर्ग ऋषि इनका नामकरण संस्कार कर रहा था तो तब उन्होंने कहा था कि ये तो नारायण के समान है, आपकी रक्षा करेगा। बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये हमको पहले क्यों नहीं बताया। तो सारे भाई बिरादरी आई, उसको नंद बाबा ने संतुष्ट किया, भगवान श्री कृष्ण के गर्ग ऋषि के मुख के कहे हुए वचनों को सुनाकर। तो ये दसवीं चली गई, और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी को नंद बाबा स्नान करने गए जमुना में, और वरुण देव लेके चला गया वो एक यक्ष। अब भगवान श्री कृष्ण कहां चले गए, जमुना में कूद के वरुण लोक चले गए, और वहां तो वरुण लोक में भगवान श्री कृष्ण को देख के वरुण देवता उठ के सारे देवताओं ने पूजा की, बड़ा सामग्री भगवान को सुंदर वस्त्र आभूषण दिए, भगवान के पिता को भी बड़े वस्त्र आभूषण दिए, बड़ा सम्मान करके वापस भेजा। जब ये बाहर निकले सब बाहर खड़े थे, और जो ग्वाल बाल जो संगी साथी थे वो नंद बाबा को कहे बट तुम्हें तो बहुत सुंदर सज धज के आ रहे हो। नंद बाबा ने कहा आपको मालूम नहीं हमारा ये लाला को बड़े बड़े लोग जानते हैं, उधर इसकी पूजा कर रहे थे बड़े बड़े देवता, सोने जैसे मुकुट पहने हुए पूजा कर रहे थे, तो ये तो बड़े वस्त्र मेरे को उन्होंने भी दी है। तो सबने पकड़ के श्री कृष्ण को बोला क्यों रे, यही तेरा बाबा है, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, इनको इतने इतने वस्त्र नए हमारे को क्यों नहीं दिखाया, ऐसे लेख अपने पिता को दिखाता है, हम के तुम्हारे मित्र नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है आपको भी दिखाता हूं, चलो सबको वैकुंठ का दर्शन कराए। अब ये कथा कह के आगे कहते उसके बाद इंद्र ने एकादशी को अभिषेक आके किया, द्वादशी को नंद बाब वरुण लोग गए, त्रयोदशी की बात हो गई। अब कहते अब दूसरे साल, तो 8 साल का कृष्ण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साल ऐसे बीत गया, और इसी लीला इससे पहले चीरहरण लीला में भगवान ने पूजा किसकी की गोपियों ने, और फल किसने दिया, कात्यायन देवी ने फल नहीं दिया, भगवान श्री कृष्ण ने फल दिया। यही तो भगवत गीता में लिखा है कि पूजा किसी भी देवता की करो फल तो भगवान देता है, पूजा की गोपियों ने कात्यायनी देवी की और फल दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये सिद्धांत ठीक है कि नहीं, कि पूजा किसी भी देवी देवता की करो लेकिन फल देने वाला मैं हूं, तो फल तो दिया भगवान ने। तो एक साल पूरा हो गया 8 साल का, जब भगवान 8 साल के हुए तब शरद ऋतु में ये रास विलास का प्रसंग आता है। तो ये भक्ति रस रूपा है वो कह रहे हैं, तो उस रस का परिकाष्ठा रास है, और ये भक्तों किस कौन कैसे भक्तों के साथ और कोई भक्त इसमें नहीं, ये रास के भी तीन स्थानों के ऊपर विशेष रूप से रास का वर्णन है। ये जो रास है इसको पंचायती रास कहते हैं, जो बंसी बट के जमुना जी के तट पे होती है। इस रास में सभी गोपियां आती हैं, गोपियों के सभी वर्ग आते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले ही मंगलाचरण के श्लोक में 3 प्रकार के गोपियों का तो नाम आया है, नाम आए हैं गोपियों के। कुछ गोपियां जो कृष्ण के अधीन है, जो कुछ गोपियां जो कृष्ण के सम जैसे उनसे व्यवहार करते हैं, और कुछ नहीं एक गोपी है जो कृष्ण को अपने बस में रखती है। तो नाम आए हैं, जैसे विशाख ललिता विशाखा आदि गोपियां भगवान अपने समान रखते हैं, और तारका आदि का नाम आया है जो भगवान के वश में रहती है, और राधिका का नाम आया है जिसके वश में भगवान रहते हैं। तो तीन तो वहां गोपियों का वर्ग बताया है। वैसे प्राय कहते हैं एक सुपक्षीय गोपियां हैं, एक विपक्षीय गोपियां हैं। जो सुपक्षीय हैं वो कृष्ण को कहती कृष्ण हमारा है, ममता होती है कृष्ण हमारा है, उनकी स्वामिनी राधा रानी है, लेकिन ललिता आदि उसकी मुख्य नेता है। और विपक्षीय गोपियां उनका भाव होता है हम कृष्ण की हैं, उनकी मुख्य चंद्रावली उनकी मुख्य गोपी है, और नाम उनके अलग है, तारका है या कैसे मुझे कुछ नाम नहीं आ रहा है ठीक याद, वो उनकी मुख्य है। और उन दोनों के बीच में एक तो तटस्थ गोपियां हैं जिनका भाव एक पक्ष में है लेकिन दूसरे पक्ष से विरोध नहीं है, तटस्थ है, एक सुहृद है, एक तटस्थ है एक सुहृद है, तो ऐसे गोपियों के विभाजन है। तो ये सारे की सारियां पहली रास में आई, जो रास जिसका वर्णन भागवत में है। लेकिन दूसरा गोवर्धन में जो रास होती है वहां विपक्षीय गोपियों को तटस्थ आदि गोपियों को आने का अधिकार नहीं है, वहां सुपक्ष गोपियां ही केवल रहती। लेकिन वहां फिर भी बड़े गोप गोपियां और जा सकते हैं, गैया चराने जाएं गैया लेने जाएं तो यशोदा नंद आदि जा सकते हैं। राधा कुंड के ऊपर जो विलास होता है उसमें और कोई नहीं होता है, सिर्फ सुपक्षीय गोपी राधा रानी और उसके पक्ष की गोपियों के साथ कृष्ण का विहार होता है, इसलिए राधा कुंड सर्वोपरि है सिर्फ सुपक्षीय गोपियों का। तो ये बात तो बहुत ऊपर की कर रहे हैं, लेकिन रास या रस इसको समझना, ये भक्ति की रस की परिकाष्ठा है। ये भक्ति के रस में इसके बाद क्या होता है, कैसे भगवान बुलाते हैं, बुलाने के बाद क्या समय क्या हो गया, हाँ 6:20 विराम देते हैं क्योंकि 6:30 आरती में जाना है सबको। हरे कृष्णा, वैसे कल क्लास लेने का था, कल हमको ब्रजमंडल परिक्रमा में क्लास देने जाना है, उनको हमने हाँ कर दिया। परसों का कुछ भाव और भक्ति के रस के ऊपर अगर कृष्ण बलनाम की कृपा प्रभुपाद की हुई तो चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।